Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Radhe. Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Sham. Lalita Vishakha Jaya Radhe Sham. Jayo Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram. Krishna Balaram, Jayo Vrindavan Dham. Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai. Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nittai Gaur Haribol, 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 Haribol. Nittai Gaur Sitanath Premanande. जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परमकाचार्य अष्टोत्तर से कृष्ण कपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति सिद्धांत सज ठाकुर जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास सगुनाथ षट गोस्वामी प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, नामाचार्य शीलादास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, इसी मायापुर नवदीप धाम की जय, श्री गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, युग धाम हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिल प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ऑल ग्रोइस टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्रोइस टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्रोस्ट असेंबल गुरु एंड गौरांग की। गुरवे गौर चंद्राया राधिकाए तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताया तद्भक्ताया नमो नमः। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलम श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताक्ष। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। राधयो भगवान ब्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम लं प्रेमापमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मदमिदं तत्रादरो नापरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण बलराम मंदिर के आज के प्रातः भागवतम कक्षा में सभी वैष्णव जन वैष्णव इसको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज के भागवतम सत्र में हम आपसे याचना करते हैं, आप कृपा करें श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता और समस्त वैष्णव जन की प्रसन्नता के लिए इस अमल महा पुराण के ऊपर आज का जो श्लोक है इसके ऊपर हम कुछ चर्चा कर सकें। तो भागवतम अष्टम स्कंद और अध्याय 16, अध्याय का नाम है पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। पयोव्रत पूजा, तो पयोव्रत मतलब क्या मालूम है? नहीं हा हा, पयो मतलब दूध, जो दूध पीकर के केवल दूध पीकर के जिस व्रत को किया जाए उसको पयोव्रत कहते हैं। पयोव्रत, तो ये पयोव्रत पूजा विधि का पालन जो है किस प्रकार से किया जाएगा इस अध्याय में कश्यप मुनि बताते हैं अदिति माता को। तो आज श्लोक संख्या रहेगा हमारा 10 और 11। तो दसवें का तात्पर्य नहीं है, दसवां मैं पढ़ता हूं अनुवाद के साथ और ग्यारहवें का जो है हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो आप इस दसवें श्लोक में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि आप जानते हैं किस प्रकार से ये प्रसंग चल रहा है और प्रसंग कहां से प्रारंभ हुआ है। जहां से देवताओं के प्रमुख राजा इंद्र के द्वारा ध्रुवासा मुनि का अपमान हो गया, अनजाने में ही अपमान हो गया, तो वहां से प्रसंग शुरू हुआ। किस प्रकार से ध्रुवासा मुनि श्राप देते हैं, किस प्रकार से देवताओं की शक्ति जो है समाप्त हो जाती है, वो श्रीहीन हो जाते हैं, वो ऐश्वर्य उनके सब समाप्त हो जाते हैं, किस प्रकार से देवता भगवान के पास पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के साथ, और देवता जन जब पहुंचते हैं तो भगवान बताते हैं कि आप क्या करो, आप देव असुरों के साथ संधि कर लो, और अमृत मंथन होगा क्षीर सागर में और इस प्रकार से अमृत बांटा जाएगा देवताओं को। लेकिन असुरों के द्वारा जो भगवान का ही धन्वंतरी रूप अवतार हुआ, असुरों ने कलश छीन लिया अमृत का, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाया, अमृत पिलाया, उसके बाद देवताओं की शक्ति बढ़ गई, देवताओं ने जो है विजय प्राप्त की। लेकिन इधर असुर जो है जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य की शरण में गए, शुक्राचार्य की उन्होंने बहुत सेवा की और उनके जितने भी बड़े आचार्य थे उनकी सेवा की। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य ने जो एक समय उनके जो बलि महाराज थे उनकी मृत्यु हो गई थी उनको पुनर्जीवित किया, सारे असुरों को तैयार किया और फिर दोबारा से आक्रमण हुआ, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण हुआ और देवताओं को जो है फिर स्वर्ग छोड़ना पड़ गया, देवताओं को फिर से स्वर्ग छोड़ना पड़ गया। और इस प्रकार से अदिति जो है बड़ी शोकग्रस्त हो गई हैं, क्योंकि अदिति देव माँ है, देवताओं की माँ है। कश्यप मुनि देवताओं के पिता भी हैं और असुरों के पिता भी हैं, लेकिन कश्यप मुनि चूंकि काफी समय से समाधि में लीन थे और अदिति अपने आश्रम में निवास कर रही थी और बहुत ही शोकाग्रस्त थी, शोकाकुल थी, क्योंकि देवता जो है वो विवश होकर के उनको अप्रकट यानी स्वर्ग छोड़ना पड़ा और वो वहां से अप्रकट हो गए या किसी गुप्त स्थानों पे चले गए। तो इस प्रकार से अदिति आश्रम में है और समाधि में काफी समय से कश्यप मुनि हैं। अब समाधि जब उनका से वो निवृत्त होते हैं तो वो अपने आश्रम में आते हैं और देखते हैं, अदिति को देखते हैं और आश्रम को देखते हैं, तो काफी चकित रह जाते हैं कि आश्रम की अवस्था ठीक नहीं है और अदिति के मुखमंडल पे भी काफी शोक है, परेशानी है, चिंताएं हैं। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि उनसे वार्तालाप करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो क्या प्रश्न करते हैं ये आप सुन चुके हैं, एक दफा मैं दोहरा देता हूं। तो कहते हैं कश्यप मुनि, हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल की सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया। तो वो यहां प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म पर कोई चोट तो नहीं आई, या ब्राह्मणों के ऊपर कोई चोट तो नहीं आई, या जो जनता है सामान्य जनता उनको कोई चोट तो नहीं आई, उस वजह से आप चिंतित हैं, उस वजह से आप शोकग्रस्त हैं। हे गृहस्थ जीवन में आसक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक अध्यात्मवादी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत तो नहीं कर पाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अतिथियों का स्वागत नहीं कर पाई और वे बिना सत्कार के ही वापस चले गए, इसलिए आप दुखी हैं। अथवा जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए बिना वापस चले जाते हैं वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिसमें स्यार रहते हैं। हे सती तथा शुभे, जब मैं घर से अन्य स्थानों को चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति भी नहीं दे सकी, क्या इसलिए आप चिंतित हैं। एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उच्च लोकों में निवास करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मणों को समस्त देवताओं के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री विष्णु का मुख माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्नों करते करते ही अनेक प्रकार की शिक्षाएं कश्यप मुनि दे रहे हैं कि इस वजह से आप दुखी हैं, मतलब ये सब दुख के कारण है। तो अब आज के श्लोक में दसवें में क्या कह रहे हैं कश्यप मुनि उसको आप सुनिए। अपि सर्वे कुशलिनस्
तवा पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये स्वस्थम आत्मानम भवत्या लक्षणेर अहम्।
हे उदारचित नारी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारे मलान मुख को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है, ऐसा क्यों है। तो अब कश्यप मुनि वैसे सब जानते हैं कि अदिति क्यों शोकाग्रस्त है, लेकिन एकदम से उन्होंने पुत्रों की बात नहीं कही। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे मिलान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है, ऐसा क्यों है।
तो अदिति भी वैष्णवी हैं और कश्यपुनि भी वैष्णव हैं और बहुत समय के बाद लौटे हैं कश्यपुनि। और जब लौटे हैं तो उनका स्वागत तो किया उन्होंने, आसन दिया बिठाया, लेकिन मुख पे प्रसन्नता नहीं थी। तो जब वैष्णव दो मिलते हैं तो कैसा होना चाहिए? दो मिले 64 खेले, नाचे 7 करोड़। तो जब दो वैष्णव मिलते हैं तो कैसे मिलना चाहिए कि 32 दांत सामने वाले के और 32 अपने, ये 64 के 64 खिल जाने चाहिए। और हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक व्यक्ति के सामान्य रूप से, तो 3.5 करोड़ हमारे रोमकूप और 3.5 करोड़ सामने वाले के रोमकूप, ये नाचने चाहिए। ऐसा मिलन होना चाहिए वैष्णव का मिलन। तो मुख पे मलिनता नहीं होनी चाहिए, ये वैष्णव अपराध है। तो इसी बात को कश्यप मुनि यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे मिलान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो यहां पर कश्यप मुनि के जो प्रश्न है 10वें श्लोक में आकर के समाप्त हो जाते हैं। अभी आज का जो 11वां श्लोक है इसकी हम मैं उच्चारण करूंगा, फिर आप पुनरावृत्ति करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। श्री अदितिर उवाच भद्रम द्विज गवाम ब्राह्मण धर्मस्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम् ग्रह मेदिन ग्रह इमे। श्री अदितिर उवाच भद्रम द्विज गवाम ब्राह्मण धर्मस्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम् ग्रह मेधिन ग्रह इमे। एक एक बोल सकते हैं। हाँ, भद्रम द्विज गवाम ब्राह्मण माता है। श्री अदिति उवाच श्रीमती अदिति ने कहा भद्रम कल्याण हो द्विज गवाम ब्राह्मणों तथा गायों का, ब्राह्मण हे ब्राह्मण धर्मस्य शास्त्र वर्णित धर्म का, जनस्य लोगों का च तथा त्रिवर्गस्य 29 की 3 विधियों धर्म अर्थ तथा काम का परम परम क्षेत्रम क्षेत्र ग्रह मेधिन हे गृहस्थ जीवन में आसक्त मेरे पति ग्रह आपका घर इमें ये सारी वस्तुएं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अदिति ने कहा हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति ब्राह्मण गाय धर्म तथा अन्य लोग सभी कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी धर्म अर्थ तथा काम ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। कृपा मेरे पीछे दोहराइए। अदिति ने कहा हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति ब्राह्मण गाय धर्म तथा अन्य लोग सभी कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी धर्म अर्थ तथा काम ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। तात्पर्य गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म अर्थ गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म अर्थ एवं काम के तीन सिद्धांतों को शास्त्रों के नियमों के अनुसार विकसित कर सकता है किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन का त्याग करके आध्यात्मिक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कश्यप मुनि सन्यासी नहीं थे अतः उन्हें यहां एक बार ब्राह्मण तथा दूसरी बार ग्रह मेधिन संबोधित किया गया है। उनकी पत्नी अदिति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जहां तक गृहस्थ जीवन का संबंध था हर बात सुचारू ढंग से हो रही थी और ब्राह्मणों तथा गायों को सम्मान तथा संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। गृहस्थ जीवन ठीक तरह से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। यहां श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत तात्पर्य जो है पूर्ण होता है। तो आज के इस श्लोक में अदिति कह रही हैं कि हे घर के स्वामी जो गृहस्थ जीवन है जिस गृहस्थ जीवन में हम रह रहे हैं उसमें धर्म अर्थ और काम इन तीन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से पूरा हो रहा है। तो गृहस्थ जीवन जो है तीन मुख्य रूप से इन पुरुषार्थ पर आश्रित रहता है धर्म अर्थ और काम। ये गृहस्थियों के लिए अगर गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ और काम नहीं है तो फिर गृहस्थ जीवन उसका कोई लाभ नहीं है। मोक्ष जो है वो वानप्रस्थियों के लिए और सन्यासियों के लिए। मोक्ष के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि घर का त्याग कर देना चाहिए गृहस्थ जीवन का त्याग करके आध्यात्मिक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो मोक्ष जो है गृहस्थ जीवन में नहीं होता उसके लिए वानप्रस्थ अथवा संन्यास। और पंचम पुरुषार्थ होता है कृष्ण प्रेम वो भक्तों के लिए होता है। धर्म अर्थ काम गृहस्थों के लिए मोक्ष वानप्रस्थों के लिए और सन्यासियों के लिए और उससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम वो भक्तों के लिए। अगर गृहस्थ भक्त हैं तो फिर वो सबसे ऊंचे हैं। ठीक है सबसे ऊंचे। तो यहां पर हालांकि बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कश्यप मुनि, तो कश्यप मुनि कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं थे। कश्यप मुनि कौन थे? कश्यप मुनि इस मनवंतर में, जो वर्तमान काल का जो मनवंतर है, इसमें व्यवस्थ मनु जिस वर्तमान काल में है उसमें सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। सप्त ऋषि, तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मद भावा मानसा जाता ये शाम लोका इमा प्रजा, के जो सप्त ऋषि हैं इससे पूर्व चार महर्षि और थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चार ऋषि मानस पुत्र। भगवान कहते हैं कि ये चार ऋषि और सप्त ऋषि, सप्त ऋषि कौन कौन से हैं इस मनवंतर में? कश्यप हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गौतम हैं, जमदग्नि हैं और भारद्वाज। तो ये सात ऋषि, सात महर्षि और चार महर्षि, जो चार कुमार, कितने हो गए? 11। और 14 मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, तो ये 25 हो गए। इन 25 जो हैं इनसे ही पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, और एक ब्रह्मांड की नहीं, असंख्य जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब ब्रह्मांडों को भरने वाले ये 25 महर्षि हैं जिनको प्रजापति कहा जाता है, प्रजा को उत्पन्न करने वाले। तो कोई साधारण नहीं है ये। तो एक समय जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया दक्ष प्रजापति को कि प्रजा की उत्पत्ति करो, तप किया था ब्रह्मा जी ने, फिर प्रजापति को कहा कि आप तपस्या करो और प्रजा की उत्पत्ति करो, तो 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए दक्ष प्रजापति के, और वो सब नारायण सरोवर चले गए, नारायण सरोवर में डुबकी लगाई और उनकी चेतना शुद्ध हो गई। उन्होंने काहे को घर गृह जीवन में प्रवेश करना। नारद मुनि आ गए, नारद मुनि ने उनको समझाया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। उसके बाद फिर दक्ष प्रजापति थोड़ा क्रोधित हुए, 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, तो 1,000 पुत्र भी तपस्या करने के लिए चले गए, फिर वो भी नारायण सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई, उनकी चेतना भी शुद्ध हो गई और बाकी बचा कुचा जो है नारद मुनि ने उनको भी वही रास्ता दिखा दिया। तो दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए, प्रजा बढ़ नहीं रही है और आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि प्रजा बढ़ाओ, ब्रह्मांड को भरना है। तो इस प्रकार से फिर कहा गया दक्ष प्रजापति को कि ये नारद मुनि जो है ये तो काम खराब कर देता है, आप कन्याएं उत्पन्न करो। तो दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया कि नारद मुनि कन्याओं को ब्रह्मचारी बनने का आदेश नहीं दे सकते, ये शास्त्र विरुद्ध है। तो इस प्रकार से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई और 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दी गई। 13 कन्याएं, उन 13 कन्याओं में अदिति जो देवताओं की मां, दिति जो दैत्यों की मां, दानु, अरिष्ट, सुरसा, सुरभि, विनिता, विनिता से सारे पक्षी उत्पन्न हुए और सर्वप्रथम गरुड़। तो कश्यप मुनि गरुड़ के पिता है, कितनी महान हस्ती है कश्यप मुनि, गरुड़ के पिता। तमारा, क्रोधवशा, ईशा, कडरू, जितने भी सांप हैं वो कदरू से उत्पन्न हुए, विश्व और मुनि, ये 13 कन्याएं जो हैं इनको प्रदान की गई। तो ये सारी जनसंख्या जो भरी गई है ये सब इन्हीं ऋषियों से पूरा ब्रह्मांड भरा गया है। तो अब जब संतान होगी तो फिर कुछ ना कुछ समस्याएं भी आती हैं, स्वाभाविक है। तो अब कश्यप मुनि का इतना बड़ा परिवार है तो इतनी समस्याएं होते हुए भी कश्यप मुनि विचलित नहीं हुए। लेकिन माताओं का यह स्वभाव होता है अगर संतान दुखी हो जाए तो माताएं दुखी हो जाती हैं, माता पिता दुखी हो जाते हैं, वास्तविक माताएं दुखी हो जाती हैं, ये माताओं का स्वभाव होता है। लेकिन अगर माता दुखी हो तो संतान कई बार दुखी नहीं भी होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के इस श्लोक में किस प्रकार से अदिति जो है उसका मुखमंडल बहुत ही मलिन है और वो अब क्या कह रही हैं, कह रही हैं अच्छा जैसे ही कश्यप मुनि पहुंचे हैं तो अदिति ने तुरंत जाकर के ये नहीं कह दिया कि कहां लगा दी तुमने इतनी देर, कहां समाधि में बैठ गए जाकर के, देखा नहीं घर का क्या हाल हो गया है, सारे हमारे देव, हमारा स्वर्ग हमसे छिन गया, कहां रह गए थे तुम, कितनी मैं कितने समय से मैं दुखी हूं, मेरी खोज खबर नहीं ली तुमने, कहां बैठे रह गए, घर का कोई होश आवास है आपको कि नहीं है। इस प्रकार से अदिति ने नहीं कहा। अदिति ने जाते ही ये भी नहीं कहा कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, नहीं कहा। कितनी धैर्यवान थी अदिति, जब पति आए हैं काफी समय के बाद तो वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं ब्राह्मण गाय धर्म तथा अन्य सभी लोग कुशल पूर्वक हैं, कुशल पूर्वक हैं। क्या कुशल पूर्वक है, स्वर्ग आपके हाथ से निकल गया, संतान आपकी पता नहीं कहां चली गई, कहां भटक रही है, पूरे के पूरे देव देवतागण कहां चले गए पता नहीं है, स्वर्ग छिन गया है। तो फिर धर्म और अर्थ और काम फिर भी कह रही है कुशल पूर्वक है, कुशल पूर्वक है। तो नमो ब्रह्मण देवाया गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे गायों के और ब्राह्मणों के शुभ चिंतक, तो भगवान जो है ब्राह्मणों के गायों के और पूरे जन समाज, पूरे पूरी समझ लो जन समुदाय के और पूरे विश्व के हितैषी हैं। तो यहां पर इसी बात को बताया जा रहा है कि ये तीन सिद्धांत जो हैं धर्म अर्थ काम, इसके ऊपर गृहस्थ आश्रम आश्रित रहता है। और इन धर्म अर्थ काम में भी सबसे मूल जो है वो धर्म होता है, मतलब धर्म के अनुसार अर्थ अर्जित होना चाहिए। बात यह है अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो अर्थ कैसे अर्जित होना चाहिए, धर्म के अनुसार। और अर्थ जब हम अर्जित करेंगे धर्म के अनुसार तो काम भी जो है वो हमारे को धर्म के अनुसार अपनी कामनाओं को पूर्ण करना। तो काम भी भगवान कहते हैं मैं हूं, कौन सा काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म अवृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भद्रशवः, कि वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, हे भरतऋषभ, वो काम मैं हूं। तो धर्म के अनुसार अर्थ की प्राप्ति, और जब धन की प्राप्ति हो जाए तो उससे कामनाओं की पूर्ति। लेकिन कौन से कामनाओं की पूर्ति? जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जैसे दक्ष प्रजापति को और अनेक प्रजापतियों को ये सेवा दी गई कि आप संतान उत्पत्ति करो, तो जो उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी गई, तो इसीलिए आज्ञा दी गई कि आप इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे? संतान उत्पत्ति करने के लिए। आप कितनी भी संतान उत्पत्ति करो, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान कहते हैं वो काम मैं हूं। लेकिन संतान उत्पत्ति न करके केवल इंद्रिय भोग के लिए गृहस्थ आश्रम में जाना, वो धर्म के अनुकूल नहीं है, वो धर्म के विरुद्ध बताया गया। अर्थ का भी अर्जन करना है तो धर्म के अनुसार। जैसे रावण था, रावण ने काफी अर्थ अर्जित किया, लेकिन जो भी उसने अर्थ अर्जित किया वो धर्म के अनुसार नहीं किया। रावण क्या, और जितने भी असुर हुए वो धर्म के अनुसार अर्थ का अर्जित नहीं करते, और जब अर्थ मिल जाता है तो अपनी कामनाओं को धर्म के अनुसार पूरा नहीं करते। तो इसी प्रकार से, तो अब जब यहां पर अदिति बता रही हैं कि भाई सब कुछ कुशल है, आज के श्लोक में यही बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि सब कुशल पूर्वक है मेरे घर के स्वामी, और यहां उनको जो है क्या कहकर पुकार रहे हैं, ग्रह मेदिन, हे ग्रस्त जीवन के आसक्त मेरे पति। पीछे कश्यप मुनि में भी उनको ग्रह मेदी करके पुकारा था, पिछले श्लोक में, एक श्लोक में, है ना। तो इस प्रकार से कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके अदिति भेद खोलेंगी, दो चार श्लोकों के बाद फिर वो बताएंगी कि देखो हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारा सब कुछ उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए, स्वर्ग हमारे हाथ से छिन गया है, सारे देवता तितर बितर हो गए हैं, हमारे पुत्र सारे तितर बितर हो गए हैं। अब आप कुछ ऐसा करो कि हमारे पुत्रों को स्वर्ग लोक वापस प्राप्त हो जाए, कुछ तो करो स्वामी, कुछ तो करो ऐसा कि हमारे पुत्रों को स्वर्ग वापस मिल जाए, मैं बहुत दुखी हूं, आगे चल के बोलेंगे। और मुस्कुराएंगे कश्यप मुनि, कहेंगे अभी तक आसक्त है, अभी तक आसक्त हो और मेरे को ग्रह मेदिन कह रहे हो। कश्यप मुनि को ग्रह मेदिन कह के पुकार रही हैं और खुद आसक्त हैं घर में, तो कश्यप मुनि मुस्कुराएंगे, कश्यप मुनि ज्ञान देंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि क्या पुत्र तेरा और क्या मेरा, सब भगवान के हैं। तो वो बात उनको समझ में नहीं आएगी, और फिर एक बात कहेंगे कश्यप मुनि कि भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान की शरण में जाने से जो कार्य बहुत कठिन दिखाई देता है भगवान उसको सरल कर देते हैं, वो सरल हो जाता है। तो कोई उपाय नहीं है, केवल तुम भगवान की शरण में जाओ। जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से लगभग अमर होने का वरदान मांग लिया था कि मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं धरती पे न मरूं, मैं आकाश में न मरूं, मैं किसी शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, न घर के बाहर मरूं, न भीतर मरूं, और मैं 12 मासों में से किसी मास में भी ना मरूं, बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या हो गई। लेकिन भगवान ने उसका भी उपाय खोज लिया, भगवान ने उसका उपाय खोज लिया। भगवान कहते हैं बेटा घबरा मत, मैं तेरे लिए पुरुषोत्तम मास लेके आता हूं, मैं एक और मास पैदा कर देता हूं, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, और मैं तेरे को चौखट पे ही मारूंगा, न घर के बाहर और न घर के भीतर। तो इस तरीके से कश्यप मुनि उनको बिल्कुल सही राय देते हैं कि आप भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान आपके सारे कार्य कर देंगे। तो जब हम हमारे हृदय में कोई कामना है या नहीं है या मोक्ष की कामना है, तो भागवतम कहता है अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। तो चाहे हमारे मन में कोई कामना नहीं है, अकाम है, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कामना नहीं, या सब प्रकार की कामनाएं हमारे हृदय में हैं, या मोक्ष की कामना है, किसी भी अवस्था में हमें क्या करना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है, भगवान की भक्ति को तीव्रता से करना, तीव्रता से करना। जब हम भगवान की भक्ति को तीव्रता के साथ करते हैं तो हमारे अंदर का जो कलमश है, जो संसारिक कामनाएं हैं, और हमारी चेतना को भगवान शुद्ध करते हैं। पिछले घटना छठे स्कंद में दिति भी कश्यप मुनि से कहा कि भाई मेरे पुत्रों को मरवाने वाला कौन है, ये इंद्र है, इंद्र है, इसने मेरे पुत्रों को मरवाया, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को, और इतना उसकी सेवा करी कश्यप मुनि की दिति ने, दैत्यों की मां है, इतनी प्रसन्न हो गए कश्यप मुनि, बोले बोल तू क्या चाहते है, क्या चाहते हो। जैसे दशरथ महाराज प्रसन्न हो गए थे कैकेयी से, जो मांगोगी दूंगा, अच्छा समय आने पे मांगोगी बताऊंगी क्या चाहिए मेरे को, तो दशरथ महाराज भी प्रसन्न हो गए थे कैकेयी से, और कश्यप मुनि भी प्रसन्न हो गए थे दिति से, बोले क्या चाहती हो तुम बताओ। दिति ने कहा एक काम कर दो, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। बहुत सहम गए कश्यप मुनि, मेरे पुत्र का ही वध करवाना चाहती है, ये कैसे है मेरी पत्नी। लेकिन कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं, अंदर ही अंदर अपने आप को धिक्कार रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया,